कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जो आपके ऑस्ट्रेलियन साथी कह रहे हैं वो बड़ा अजीब है या आपको समझ नहीं आ रहा, तो निश्चिंत रहें कि आप अकेले नहीं। और हाँ, आपकी अंग्रेजी भी ठीक ठाक है, बस ऑस्ट्रेलिया में बातचीत का अंदाज थोड़ा जुदा है। हमारे साथ हैं नेल्टन डिसूजा, जिन्होंने थोड़ा घबराने और शायद थोड़ा शर्माने के बाद एक ई बुक द इंडियन डाउन अंडर लिख डाली, जो शायद आपके एयरपोर्ट पर लैंड करने से लेकर ऑस्ट्रेलिया में नई जिंदगी शुरू करने की गाइड बुक हो सकती है। नेल्टन डिसूजा, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
थैंक यू, धन्यवाद।
अरे सर, ये तो बताइए कि क्या मसाला आपने इसमें परोया है और क्यों जरूरत पड़ी आपको इसको लिखने की?
जी, वैसे तो कुछ मसाला वसाला तो कुछ है नहीं, आप तड़का तो जरूर बोल सकते हैं। पॉइंट ये है कि जब मैं यहाँ पे आया था फरवरी में 2016, पिछले साल, तो मैं जब आया था ऑब्वियसली मेरा परसेप्शन था कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, चलिए क्रिकेट खेलती है, यू नो लेफ्ट में ड्राइव करती है वगैरह वगैरह, डेवलप्ड है तो चल जाएगा, मतलब इतना मुश्किल नहीं होगा, अमेरिका जैसे ही होगा थोड़ा बहुत। तो जब मैं आया था तो ऑब्वियसली वो सब दिमाग में था मेरे, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मुझे बहुत अलग लगा बेसिकली। तो
जो सपने टूट गए आपके?
सपने मतलब सपने सपने की बात नहीं, बेसिकली इट्स लाइक मैं जब इंडिया में था तो मुझे दोस्त बनाने की ज्यादा मुश्किल नहीं होती थी, आराम से बनाता था मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे कल्चर बहुत अलग है। अगर आप ये सोच के आओगे कि मतलब यहाँ पे यू नो आप डे वन से बिल्कुल मशहूर हो जाओगे या आराम से सेटल हो जाओगे, तो बहुत बहुत अलग है। जैसे यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अगर आप इंश्योरेंस की बात लें, आपको नो गैप और गैप का मतलब समझ में आना चाहिए, हेल्थ और हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, मेडिकेयर, सेंट्रलिंक, बैंक में जाना पड़ता है। आई मीन सबसे पहले तो मुझे हैरानी ये हुई थी जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, हालांकि मेरे दोस्तों ने मुझे बोला था कि मतलब ऐसा ऐसा होता है, लेकिन जब आप पहली बार उसको एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको समझ में आओगे, तभी मतलब समझ में आएगा कि यहाँ पे कितना अलग है। तो बस इतना ही था कि मुझे ऐसा लगा कि यू नो इट्स मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे इतनी मुश्किलात फेस करनी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली जो आ रहे हैं यहाँ पे तो उनको भी लगेगा कि भाई कहाँ पे आए हैं, मतलब जो हमने सोचा था ये बहुत अलग है। तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया ताकि वो जो गम होता है, वो जो पेन होता है, क्योंकि आपके पास कोई इमोशनल एंकर नहीं होता, एक कनेक्ट नहीं होता कि आप जाके लोगों से बात कर सके या दोस्त बना सके, एटलीस्ट कोई आपको हाथ पकड़ के दिखा दे बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता इतने गम में, इतने पेन में जब मैं था, तो मैं स्लोली स्लोली अपने आप को बहुत पेशेंट रखा, मैं लोगों से बात करता था तो लोग बोलते थे एटलीस्ट तुझे 2 साल तो लगेंगे यहाँ पे दोस्त बनाने में, मैं मुझे हैरानी होती थी 2 साल। लेकिन स्पेशली अगर आप यहाँ पे नए आए हो और आप सोशलाइज करने का सोच रहे हो, यू नो यू वांट टू सोशलाइज ताकि आपको एक थोड़ा सा यू नो कंफर्ट मिले, तो यहाँ पे आप डे वन से वो नहीं हो पाएगा। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली 2 साल के बाद आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो आ ही जाते, वो धैर्य आ जाते, वो पेशेंस आ जाती है, समझ में आ जाते कि भाई ओके 2 साल लगेंगे, स्लोली स्लोली आपको यहाँ का खाना अच्छा लगने लगेगा। आप इंडियन रेस्टोरेंट भी देखोगे आपको मतलब ऐसा नहीं, वो चटपटा खाना आपके दिमाग में होगा लेकिन यहाँ पे आपको वो चटपटा खाना कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब इंडियन खाना तो मिलेगा, पनीर वनीर तो सब कुछ मिलेगी, लेकिन वो जो जायका रहता है, वो जो टेस्ट रहता है, जैसे हमें घर में मिलता है, जैसे इंडिया में मिलता है, वह यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली उनको अपना स्पाइस लेवल कम करना पड़ता है। तो स्लोली स्लोली समझ में आता है कि भाई ऐसा ही है, और यूज टू हो जाता है बंदा, एक सिस्टम का एक आदि हो जाता है, मतलब कैसे बात करना, मतलब ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे कोलोकुलिज्म है, जैसे ये लोग हाउ यू गोइंग बोलते हैं, हाउ यू डूइंग नहीं बोलते, तो उसके ऊपर भी एक कहानी है बेसिकली। तो मतलब क्या मैं सुना सकता हूँ वो कहानी?
बिल्कुल बताएं।
तो एक बार एक्चुअली मैं ऑफिस से निकल रहा था, तो मैं तो हाल ही में आया था, मेरे बहुत कम दिन हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में, मैं ऑफिस से निकल रहा था, तो एक बंदा मेरा जो वर्क कलीग था वो अंदर आ रहा था ऑफिस के अंदर, शायद मीटिंग के लिए गया होगा तो आ रहा था, तो मैं निकल रहा था तो उसने मुझे देख के बोला हे हाउ यू गोइंग। तो मुझे लगा कि मैं निकल रहा हूँ घर के लिए तो ऑब्वियसली वो मुझसे पूछ रहा होगा हाउ यू गोइंग, तो मैंने तो भाई लिटरल सेंस में बोल दिया कि मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। तो वो सुन के वो हंसने लगा, बिल्कुल टूट टूट के हंसने लगा, समझ में आया खो के आ गया, मैंने क्या बोला। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली मैं सोच रहा था कि क्या बोला मैंने, उसने कहा हाउ यू गोइंग, तो मैंने पूछा आई एम गोइंग बाई ट्रेन, तो मेरे दिमाग में वो लॉजिकल आंसर बन गया। तो मैं रुका, मतलब वो हंस रहा था, तो फाइनली वो अपने आप को संभाला, और फिर मैंने उसको पूछा कि हु, आई मीन वाज दैट सो फनी, मतलब क्या हुआ। तो मुझे बोल रहा है कि भाई यहाँ पे ना लिटरल सेंस मतलब हाउ यू गोइंग का, क्योंकि हाउ यू गोइंग हम बोलते हैं, इट्स नॉट हाउ यू गोइंग मतलब आप कैसे जा रहे हो, इट्स लाइक हाउ यू डूइंग या हाउ इज योर डे गोइंग. तो वैसे तब मुझे समझ में आ गया, अरे भाई साहब ये तो मुझसे पूछ रहा था हाउ यू डूइंग. तो अब समझ में आ गया कि जब बंदा ऐसे पूछता है तो उसको नॉर्मली आंसर देना पड़ता है, आई एम नॉट टू बैड या आई एम फाइन थैंक्स हाउ आर यू, वैसे वैसे. एक और बार ऐसा हो गया था कि भाई मैं तो ऑफिस में था, तो मेरा एक मैनेजर था जो ऑस्ट्रेलियन था, तो उसने मुझे कहा कि यू नो फॉर लेट्स डू अ मीटिंग एंड आई विल मीट यू इन द आरवो. तो उसने मुझे बोला लेट्स डू अ मीटिंग एंड आई विल मीट यू इन द आरवो. तो मैंने सुना आरवो, तो मैं तो भाई जैसे अपने इंडिया में होता है हम लोग अपने ऑफिस के अंदर मीटिंग रूम्स रखते हैं, तो अलग अलग मीटिंग रूम के अलग अलग नाम होते हैं. तो मुझे लगा भाई ऑफिस में होगा एक मीटिंग रूम जिसका नाम होगा आरवो. तो मैं ढूंढने लगा ढूंढ के ये फ्लोर वो फ्लोर, समझ में नहीं है कहाँ पे. तो फाइनली भाई मैंने एक बंदे को पकड़ा और उसको पूछा आहिस्ता से, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज द मीटिंग रूम आरवो. तो वो मुझे देखने लगा कि मतलब मैं बोल क्या रहा हूँ. तो मैंने कहा व्हाट व्हिच मीटिंग रूम, आई सेड आरवो. तो उसने बोला भाई आरवो का मतलब मीटिंग रूम नहीं है, आरवो का मतलब आफ्टरनून होता है. तो मैंने कहा भाई साहब ये तो मतलब और एक, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक्चुअली हम नजरअंदाज करते हैं. हमें एक्चुअली जब हम अपना जैसे फॉर एग्जांपल वीजा एप्लीकेशन फाइल करते हैं, हमारे दिमाग में ये सब आता नहीं है. हम सोचते हैं कि यू नो पैसा होना चाहिए, यू नो जॉब होनी चाहिए, पेपर वर्क ठीक तरह से होना चाहिए, लीगैलिटी फॉर्मेलिटी वो सब हमें करना चाहिए, कैसे सेटल होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूलिंग एजुकेशन. लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कोई बताता नहीं, और शायद से अगर बताए भी तो वो दिमाग में आती नहीं है. और जब तक आप उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको समझ भी नहीं आएगा कि भाई ये सब होता है, और आपको उस दौर से बेसिकली गुजरना पड़ता है. तो ये सारी मुश्किलात जो मतलब मैंने फेस की, मेरे बहुत सारे लोग जो मेरे साथ आए थे, या मतलब बहुत सारे लोग जिन्होंने काफी साल पहले आए थे, मतलब उनको भी ऐसा एक बेसिकली ये सफर तय करना पड़ा. तो ये जो मुश्किल है, ये जो डिप्रेशन या जो भी हो आप यू नो इरिटेशन जो भी हो आप एक्सपीरियंस करोगे यहाँ पे, उसको थोड़ा सा मैं नहीं बोलूंगा कि ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा कम करने के लिए मैंने ये बुक लिख डाली, ताकि एटलीस्ट जो आने वाले हैं या फॉर एग्जांपल या जो अभी रिसेंट हाल ही में आए हैं, तो एटलीस्ट उनको ये गाइड बुक जैसे मिले. क्योंकि मेरे पास मेरे साथ कोई था नहीं जिसका हाथ में पकड़ के यू नो ये सब उस दौर से गुजर सकता था, या जिसने मुझे आराम से दिखाया कि भाई ये ऐसा है तुझे यहाँ जाना है ऐसा होगा, किसने मुझे ये सब बताया नहीं था. तो एंड आई फेल्ट कि अगर मेरे पास कोई ऐसा होता या मेरे पास कोई ऐसी गाइड बुक होती, तो डेफिनेटली मेंटली तो मैं बहुत प्रिपेयर होता, और मेरी बहुत सारी चीजें जो मुझे गुजरनी पड़ी जस्ट टू एक्सपीरियंस इट, या यू नो बिकॉज आई हैड नो अदर चॉइस, वो मुझे यू नो आई मूव मुझे करनी नहीं पड़ती. आई कुड हैव लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स, एंड दिस इज व्हाट आई फेल्ट कि अगर ये मैं ये बुक लिखूं तो ये बहुत अच्छा होगा हर किसी के लिए.
आपके एग्जाम्पल सुन के बड़ा मजा आ रहा है, और उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस किताब को पढ़ेंगे तो उनके लिए भी ये बड़ी मददगार होगी. SBS हिंदी से बात करने के लिए नेल्टन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बधाई भी इस किताब के लिए.
थैंक यू सो मच आपको. थैंक यू सो मच.